अस्सलाम वालेकुम। आज सोच विचार के साथ हम दोबारा हाज़िर हुए। कोशिश यही है कि पाकिस्तान में एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन होती रहे, स्पेशली विद रिगार्ड टू द इकॉनमी, विद रिगार्ड टू यू नो वेरियस थिंग्स रिलेटिंग टू द इकॉनमी, रिलेटिंग टू द कंट्री इन जनरल, और वैसे भी डेवलपमेंट पे हम करते रहते हैं। तो आज मेरे साथ हैं रियाज़ुल हक साहब। बहुत काबिल आदमी है, वेल नोन आदमी है। इन्होंने सिलिकॉन वैली में बहुत अरसा काम किया और एक बड़ा एक्टिव ब्लॉग मेंटेन करते हैं ये पाकिस्तान पे, और काफ़ी नज़र रखते हैं पाकिस्तान पे, और काफ़ी अच्छी इनकी मालूमात पाकिस्तान के बारे में है। पर आज ही इज़ गोइंग टू टेल अस अबाउट इनका जो अपना सब्जेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा सब्जेक्ट शुरू हो गया, डिजिटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी एंड इंटरनेट को लाना और हर जगह डिजिटाइजेशन को लगाना। तो रियाज साहब से पूछते हैं इसका क्या मतलब है। तो रियाज साहब, टू बिगिन विद, थोड़ा सा अपना करियर बता दीजिए जरा वेरी ब्रीफली, सो दैट पीपल इन पाकिस्तान आर फेमिलियर विद यू।
जी, मैं पाकिस्तान से, कराची से मेरा ताल्लुक है। मैंने एनईडी से ग्रेजुएट किया था। उस जमाने में वो एनईडी कॉलेज कहलाता था, और ये पुराने कैंपस से जो सिटी में है, डाउनटाउन में। और मैं यहाँ तकरीबन 40 साल से हूँ सिलिकॉन वैली में, और मैंने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम किया। ज़्यादा अरसा मेरा करियर का गुजरा है एक कंपनी है इंटेल, उसमें, और मैंने वहाँ, मैं माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन में था। मैंने कई माइक्रो प्रोसेसर्स उनके डिज़ाइन किए हैं। 386 पे मैं माइक्रो, जो 386 माइक्रो प्रोसेसर है, पहला 32-bit माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल का, जो पीसीज में यूज हुआ।
ये तो पाकिस्तान में सबको पता है, बिकॉज हर बंदे के पास इंटेल हाथ में है आजकल।
जी तो मैं उसका लीड डिजाइनर था 803-86 प्रोसेसर का, और उस पर मुझे एक अवार्ड भी मिला था, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड पीसी मैगजीन का,
माशाल्लाह।
जी, 1985 में।
Good.
और उसके बाद मैंने कुछ कंपनियां स्टार्ट की, उनको बेचा। तो अब मैं इस वक्त रिटायर्ड हूँ, लेकिन ये है कि मैं मुख्तलिफ जो स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तानी जो कर रहे हैं दूसरे लोग, उनको एडवाइस करता हूँ, उनके बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स पर हूँ। तो ये आजकल मेरा काम है।
एक्सलेंट। तो रिया साहब बताइए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बात की है डिजिटाइजेशन पे कि हमें करनी चाहिए, इसका पहले मुझे बताइए, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मुझे पता नहीं इसका मतलब क्या है।
जी, तो हाल ही में बहुत गुफ्तगू हो रही है इस मौजू पर पाकिस्तान में, और अभी कल या परसों मैंने सुना कि जो जहांगीर तरीन साहब हैं, जो बहुत करीब एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि कोई खातून है जो गूगल के लिए काम करती हैं, और उन्होंने गूगल छोड़ के ये एक्सेप्ट किया है कि वो पाकिस्तान में आके डिजिटाइजेशन का काम करेंगी, और ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से ये काम होगा, वो इसको लीड करेंगी एफर्ट को। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि डिजिटाइजेशन है क्या चीज। तो मेरा ख्याल में, जो मेरी एक जो डेफिनेशन है उसकी ये होनी चाहिए, वो ये है कि परवेसिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज in all aspects of life, business, trade, industry, media, finance, government, education, entertainment, military, etc., etc. तो ये एक बुनियादी डेफिनेशन मेरे जहन में इसकी आती है।
नहीं तो मुझे बताइए, जब आप कहते हैं परवेसिव यूज, अब मुझे बताइए कि फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में जब लिटरेसी इतनी लो है, जब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, खैर अब तो काफ़ी हो गई है मेरे ख्याल मोबाइल फ़ोन की वजह से, बट अभी भी एक्सपेंसिव तो रहता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो आप कह रहे हैं ना कि परवेसिव यूज, यानी कि भरपूर इस्तेमाल हर जगह हो रहा हो, इसमें क्या दुश्वारियाँ आएंगी और क्या चीज़ें हैं?
जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा, लेकिन यह है कि उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और एफर्ट की ज़रूरत है। और उसमें यह है कि दो चीज़ें इसमें बुनियादी हैं डिजिटाइजेशन के लिए किसी भी मुल्क में। एक तो जाहिर है कि ह्यूमन कैपिटल चाहिए उसके लिए, यानी जो स्किल सेट है वो डेवलप करने की, ग्रो करने की ज़रूरत है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। और दूसरा जो है वो है एक्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी फाइनेंशियल। तो ये दोनों काम जो हैं ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हो रहे हैं। अब इस पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या ये इज इट फास्ट इनफ, इज इट अप्रोप्रिएट, इज इट एट द राइट यू नो पेस, ये सवाल उस पे पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये है कि मसलन इस वक्त मैं ये जानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर फाइबर इंस्टॉल किया जा रहा है। दूसरे ये है कि अभी रिसेंटली जोंग ने अनाउंस किया है, जो जिसको कहते हैं सी एम पैक भी कहते हैं, चाइना मोबाइल पाकिस्तान, के वो उन्होंने 5G ट्रायल्स वहाँ शुरू कर दी हैं पाकिस्तान में। जो 5G टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वी टॉकिंग अबाउट गिगाबिट रेंज ऑफ स्पीड्स। तो ये हो रहा है। दूसरे ये है कि वहाँ पर काफी हद तक अब लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, ऐसी या जनाब टैबलेट्स आ गई हैं, ऐसी डिवाइसेस जिनसे वो इंटरैक्ट, इनसे वो एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और नंबर्स का ऐसा है कि तकरीबन इस वक्त जो है पाकिस्तान में कोई 70 मिलियन, करीब 70 मिलियन के करीब सब्सक्रिप्शंस हैं ब्रॉड, which is more than the critical, you know, mass required to get this off the ground.
पर यह सब इसमें जो जो मुझे मसला नज़र आ रहा है वो ये कि एक तो खैर हम सब ने जाना तो डिजिटाइजेशन की तरफ है ही, मतलब अब तो ट्रेंड चल गया है। देखें ना, आज से 10-15 साल पहले एक आम आदमी जो है वो उसको पता ही नहीं था क्या होता है मोबाइल फ़ोन। अब सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। मैं बल्कि देखता हूँ कई दुकानदारों या ड्राइवरों के पास दो दो तीन तीन मोबाइल फ़ोन्स हैं और हर कोई एक्सेस कर रहा है। बल्कि एक साहब हैं पाकिस्तान में, रेहान, जो बहुत बड़े फेसबुक के फ़ैन और उनका बहुत बड़ा फेसबुक का पेज है, उन्होंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई कि वो पूरे पाकिस्तान में उन्होंने ट्रैवल किया बाय कार और छोटे छोटे विलेजेस में देखा, तो वहाँ भी उन्होंने देखा कि जो अनपढ़ आदमी है वो भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अनपढ़ होने के बावजूद फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है। पर मसला ये है कि इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? तो नेचुरल ट्रेंड है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसमें हमारी कि क्या कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं?
जी, तो इसमें जाहिर है कि ये डिजिटाइजेशन का काम जो है ये हुकूमत अलोन नहीं कर सकती है, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि जो एसेंशियल पॉलिसीज हैं उसके लिए वो सेट करे। मसलन ये ज़रूरी है कि वक्त पर ये इसकी जो जैसे 5G ट्रायल्स हो रही हैं, वक्त पर ट्रायल्स कंप्लीट हों, वक्त पर जो लाइसेंसेस वगैरह इशू किए जाएं इन कंपनीज को जो इसमें इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में, ताकि वो अपना काम कर सकें और उसको डिप्लॉय कर सकें लार्ज स्केल के ऊपर। दूसरा गवर्नमेंट का काम ये है कि जो एजुकेशन है उसमें इन्वेस्ट करे, ताकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि अब ऐसा है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो तकरीबन दुनिया जिंदगी के हर शोबे में है। अब घर में जो आपके जो इक्विपमेंट है, मसलन आपके जो रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, या जनाब आपके जो वॉशर ड्रायर हैं, ऐसी जो मशीनें हैं, इनमें भी काफ़ी हद तक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो गया है। तो इनको ठीक करना हो, अगर रिपेयर करना हो, इसके लिए टेक्नीशियंस भी चाहिए, उनको कुछ समझ बूझ होना चाहिए डिजिटल टेक्नोलॉजी की। तो ये जो है हर लेवल पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, नॉट जस्ट इंजीनियर्स बट लोअर लेवल्स, रिपेयरमैन, टेक्नीशियन, सर्विस पीपल, कि जो इससे वाकिफ हों टेक्नोलॉजी से, इस हद तक वाकिफ हों, इतनी समझ बूझ हो उन्हें कि ये चीज़ें ये ठीक कर सके रिपेयर की ज़रूरत हो तो।
पर रिया साहब ये बताइए कि ये मैं समझ गया, पर मुझे एक बात समझ आई कि अगर हम मतलब हुकूमती निज़ाम में फॉर एग्जांपल डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल बहुत कम है इस वक्त, ठीक है, मोबाइल पेमेंट्स इस वक्त मुल्क में नहीं एक्सेप्टेबल, फॉर एग्जांपल पेपैल नहीं हम एक्सेप्ट करते, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अब मोबाइल फोन पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हम कहते हैं हम अपना मोबाइल फोन बनाएंगे। आपका ख्याल है ये फीजिबल पॉलिसी कि हम अपना मोबाइल फोन बनाएं और बाकी आईफोन वगैरह इन चीजों को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें?
नहीं, अपना तो बनाने की जो है वो जरा मामला ज्यादा मुश्किल है इस वक्त इस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे, लेकिन ये किया जा सकता है कि जो तकरीबन हर महीने आजकल मैंने जो मेरी जो फिगर्स हैं वो ये है कि 1 to 2 million स्मार्टफोन्स बिक रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है कि जाहिर है कि अब जो है ये मार्केट इस काबिल है कि इसके अंदर मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाए इसकी। तो पहला स्टेज है उसका कि असम्बलिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू की जाए और डिजाइन वगैरह ये स्टेज तो बाद में आएगा। तो ये रफ्ता ये काम होगा लेकिन किया जा सकता है।
पर हमने गाड़ियों के मामले में ये शुरू किया था गाड़ी असेंबल करना आज से कुछ 60-70 साल पहले, आज तक हम वहीं असेंबली पे बैठे हुए हैं, बल्कि उल्टा ये हो गया है कि हमारी गाड़ी पीछे जा रही है, आगे नहीं जा रही। फॉर एग्जांपल दुनिया में हाइब्रिड कार्स आ गई, वो हम बनाते नहीं है जी।
आजकल जो है ना दुनिया में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें जो सप्लाई चेन है वो हर जगह ग्लोबल है। अब जो अमरीका में जो गाड़ी बनाई जाती है वो पूरी की पूरी यहाँ नहीं बनती है, उसके पार्ट्स मुख्तलिफ जगह से वो सोर्स करते हैं जहां भी उनको यू नो वैल्यू चेन स्टैब्लिश की हुई है उन्होंने, जहां उनको सही टेक्नोलॉजी मिलती है, सही कैपेबिलिटी, सही स्पेसिफिकेशन, सही प्राइस, उसके हिसाब से वो। तो अब उसके लिए जो है ना बहुत बड़ी ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री चाहिए आपको। तो पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री तो काफी डेवलप हो गई है, खासतौर पे जो मोटरसाइकिल्स के लिए जो पार्ट्स वार्ट्स बनते हैं, तकरीबन 80-90% जो मोटरसाइकिलें बनती हैं वहां वो सब पाकिस्तानी कंटेंट है उनकी। इसी तरह इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार्स बनाने में भी यही काम हो रहा है। अब सुजुकी के बहुत ज्यादा पार्ट्स जो है ना वो मैंने सुना है कि जो सिर्फ जो ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है इट्स अ मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस इन पाकिस्तान।
अच्छा अच्छा,
मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ऑटो पार्ट्स वगैरह के काम करते हैं। एक हमारे एनईडी के एक साहब है, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो यहाँ आए हुए थे अमेरिका के दौरे पे एक बार, तो उनको बल्कि पहली बार जो है ना यहाँ डिट्रॉइट में ऑटो शो में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाई। तो इनके लिए मौका है इसका कि ये न सिर्फ पाकिस्तान में कंटेंट बढ़ा सकें अपनी ऑटो पार्ट्स की बल्कि दुनिया में और जगह एक्सपोर्ट भी कर सकें।
अच्छा ये बताइए रियाज साहब कि अगर हम मोबाइल फ़ोन फॉर एग्जांपल बनाते हैं, असेंबल करते हैं जैसे आपने कहा, तो मोबाइल फ़ोन में तो पार्ट्स ही कोई नहीं होते, मोबाइल फ़ोन में तो सिर्फ बोर्ड है और वो बाकी केसिंग है। अगर बोर्ड और केसिंग दोनों बाहर से आएगी तो हम घर में क्या बनाएंगे?
नहीं नहीं केसिंग बना सकते हैं उसकी। अच्छा, और जो उसके कंपोनेंट्स में मसलन आप जो है ना अगर आप फर्ज कीजिए कि जो उसके जो माइक्रो प्रोसेसर वगैरह तो जाहिर है बाहर ही से मंगाएंगे, लेकिन यह है कि उसकी जो बोर्ड है जिसके ऊपर उसको माउंट करते हैं वो बोर्ड बना सकते हैं, जो उसके जो प्लास्टिक का कंटेनर है जिसके अंदर उसको लगाया जाता है बोर्ड को वो बना सकते हैं, उसका स्क्रीन बना सकते हैं ऊपर का स्क्रीन, नॉट दी एक्चुअल एलईडी बट द प्रोटेक्टिव स्क्रीन दैट सिट्स ऑन टॉप ऑफ इट। तो ये सब चीजें मुमकिन हैं।
बट जैसा अगर कि जब मैं देखता हूं कि यहां मोबाइल फोन तकरीबन हर साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाता है, जैसे एप्पल ने अभी नया फोन निकाल दिया है और सैमसंग अब फोल्डेबल फोन निकाल रहा है, तो जिस तरीके से यहाँ काम बढ़ रहा है अगर हमने वहां बनाना शुरू कर दिया कि हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे कि हम एक ही पुराने मॉडल के साथ हमारी शादी हो जाएगी और हम उससे निकल नहीं सकेंगे?
ऐसा मतलब ये कि वो गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड करता है।
अच्छा,
अगर आप बिल्कुल कहेंगे कि भाई नहीं आप बाहर का कोई चीज खरीद ही नहीं सकते तब तो ये प्रॉब्लम होगा। जिस तरह इंडिया ने बहुत अरसे प्रोटेक्ट किया अपनी ऑटो इंडस्ट्री को, तो वहां की जो है ना वो तो पुरानी सी फियाट जो है हर जगह वो फिरती थी नजर आती थी वहां पर, साल हा साल तक ऐसा था वहां। तो उससे पहले कि इन्होंने जनाब जब लिबरलाइज किया मार्केट को खोला बाहर से दूसरे ऑटो इंडस्ट्री, लेकिन इस दौरान फायदा उनको यह हुआ कि जैसे टाटा मोटर्स है उसमें इंटरनल कैपेसिटी काफी उन्होंने डेवलप कर ली उसके नतीजे में, और अब जो है वो तकरीबन पूरी कार वहां बनाते हैं इंडिया में, उसकी जो यू नो पावर ट्रेन वगैरह सब बनाते हैं, इंजन बनाते हैं उसका, गियर बॉक्स वगैरह सब, तो ये सब चीजें वहां बनने लगी हैं। लेकिन ये कि उसके लिए उनको काफी दिन लगे, प्रोटेक्ट किया उन्होंने इंडस्ट्री को। इसी तरह साउथ कोरिया वॉज अ वेरी प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बाहर की चीज नहीं आने देते थे वहां पर, इवन ना वो प्रोटेक्शनिस्ट हैं, हालांकि अब तो काफी डेवलप हो गए वो।
बताइए कि ये जो है
वो ये अलाउ करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको दे कैन हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर देयर इंडस्ट्रीज।
अच्छा, यह सब ये बताइए कि जो डिजिटाइजेशन में अगर हम काम करें फॉर एग्जांपल, तो जो एक जो बहुत डरा रहा है यहाँ अमेरिका में, बहुत इस पे लिखा जा रहा है, बहुत बातें हो रही हैं कि जितनी डिजिटाइजेशन होगी उतनी नौकरियाँ कम होंगी, तो हमारे मुल्क में तो आपको पता है पॉपुलेशन का बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या हम नौकरियों का क्या करेंगे अगर हम बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ चले गए, तो हमारे मुल्क में क्या नौकरियां इतनी निकल आएंगी कि बंदे फुल एम्प्लॉय हो सकेंगे?
हाँ, ये एक कंसर्न है, ये वैलिड कंसर्न है। अब मसलन मैं एग्जांपल देखता हूं कि जैसे एक जमाना था यहां पर अमेरिका में, मैं देखता था कि तकरीबन हर स्ट्रीट कॉर्नर पर एक ब्लॉकबस्टर था, वीडियो वगैरह जहां से लोग रेंट करते थे। अब जनाब क्या हुआ कि देखते ही देखते ये नेटफ्लिक्स आया और उसने जनाब सब खत्म कर दिए जितने भी ये वीडियो स्टोर्स हैं। तो मेल करते तो वो सिलसिला भी खत्म हो गया, आप जो है वो स्ट्रीमिंग पे आ गए हैं। तो अब वो सब जो लोग काम करते थे, मैं कुछ लोगों को जानता हूं कि जो इनके पास फ्रेंचाइजेस थी, वो तो एकदम उनकी फ्रेंचाइज वगैरह को वैल्यू नहीं रही। इसी तरह ये टैक्सी ड्राइवर का बिजनेस इज अंडर असॉल्ट। ये जनाब ये जो ऊबर जब से आई है, तो ये जो टैक्सी ड्राइवर बहुत लिमिटेड नंबर्स में थे, लेकिन ये है कि एक चीज जो उसके नतीजे में हुई है उसको कहते हैं गिग इकॉनमी, कि उसमें जो है ना अब तकरीबन जो चाहे वो बेसिकली टैक्सी ड्राइवर बन सकता है। उसको उन्होंने जो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि सिर्फ चंद लोग होंगे, तो वो अब खत्म हो गया। लेकिन उसका जो डाउनसाइड ये है कि इनकी इनकम्स वगैरह भी अब ड्रॉप हो गई हैं। जो ड्राइवर्स हैं, पहले ये बहुत पैसे बनाते थे टैक्सी ड्राइवर, बल्कि न्यूयॉर्क में तो मैंने सुना है कि जो उनका मेडेलियन था, जो लाइसेंस उनको मिलता था, वो $1 million का मिलता था वो लाइसेंस उन्हें। लेकिन अब जो है वो जब से जनाब ये ऊबर को अलाउ किया, वो सब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। वो उसमें दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी ओपन अप होंगी। सबसे ज्यादा जो इम्कान है वो गिग इकॉनमी के ओपन अप होने का है, जिसमें बहुत सारे लोग होंगे काम करने वाले। उसमें हो सकता है कि इनकम इतनी ज्यादा ना हो, प्रोटेक्शंस ना हो, उनको जनाब ये सब बेनिफिट्स जो हैं ये सब ना मिलें, जो कि आजकल जो बाकायदा जो नौकरी करने वाले लोग हैं इनको मिलते हैं। लेकिन ये है कि वो अपॉर्चुनिटी है एक।
अच्छा, ये जो जब आप बात करते हैं डिजिटाइजेशन की, तो इसमें एक और भी तो मसला आ जाएगा ना, कि हम जैसे चीन में हो गया है कि चीन में उन्होंने अब सबकी शक्लें देख के सबका बिहेवियर मार्क करना शुरू कर दिया है, और सुबह शाम आपको वो बताते हैं कि भाई आपने बदतमीजी की, आप अच्छी तरह बिहेव किए कि नहीं, तो आपसे हमने वो बेनिफिट सर्टन निकाल लेने हैं या आपको दे देना है। तो एक किस्म की वो जो जॉर्ज ऑरवेल की फेमस किताब थी 1984, वो ज़माना भी आ गया ना, कि अब हमारा कोई प्राइवेसी नहीं रही और हर जगह हम तकरीबन एक पुलिस स्टेट के तहत रहेंगे। क्या ये भी एक सच्चाई है या ये भी ये गलत बात है?
प्राइवेसी कंसर्न्स भी वैलिड हैं। अब अमेरिका में भी बहुत ज़बरदस्त सर्वेलेंस स्टेट है, यहाँ भी बल्कि जो स्नोडन है, जो रशिया भाग गया था, अमेरिकन जो काम करता था यहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, जिसने सब बहुत सारे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, तो उसने अपनी किताब में लिखा है कि इतनी ज़्यादा परवेसिव सर्वेलेंस है कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं, आप जो कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं अपने सेलफोन के ऊपर, आपकी लोकेशन, ये हर चीज़ जो है ये NSA के पास मौजूद है। तो ये तो खतरा हर जगह है, सिर्फ पाकिस्तान में या चीन में नहीं है। अब ये लोग चीन को गालियां देते हैं अमेरिका वाले, इसलिए कि जाहिर है कि ये इनकी एक स्ट्रेटजी है कि कहें कि भाई वो जो है वो बड़ी खराब कंट्रोलिंग स्टेट है और हम जो है बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ी फ्रीडम है हमारे यहाँ। लेकिन ये सर्वेलेंस सब जगह हो रही है और होगी, इसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
अच्छा, अब आप ये बताइए, आप स्टार्टअप कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, मैं दो सवाल स्टार्टअप पे भी आपसे पूछ लूँ। एक तो स्टार्टअप का पाकिस्तान में बड़ा शोर मचा हुआ है आजकल के, जी स्टार्टअप होने चाहिए, हुकूमत ने इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बना दिए हैं और काफ़ी कंपनियां शुरू भी हो गई हैं। इसमें क्या आपको लग रहा है, कितना सक्सेस रेट है और कितनी अपॉर्चुनिटी है और कितना पाकिस्तानी ने अभी तक सक्सेस पाया है इसमें, क्योंकि अब काफ़ी साल हो गए हैं इस काम को होते हुए। कुछ कंपनीज तो आई हैं पर वो ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है दराज डॉट पीके, ये तो ठीक ठाक बिकी भी है और ज़मीन डॉट कॉम भी है, बट क्या ये इस स्फीयर में इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं अच्छा, और इसमें हमारी पॉलिसी ठीक है और कैसे बेहतर हो सकती है?
असल में इंक्यूबेशन सेंटर्स जो है ना वो गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेट्स के लिए चलाना मुश्किल है, या ऐसे लोगों के लिए कि जिन्होंने कभी खुद कंपनी स्टार्ट ना की, जो खुद एंटरप्रेन्योर्स ना हो, उनको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि क्या इश्यूज होते हैं स्टार्टअप के। तो अमेरिका में ऐसा है कि यहाँ जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो ऐसे लोग चलाते हैं जो खुद एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल कंपनियाँ स्टार्ट की हैं। तो पाकिस्तान में ये सूरत नहीं है, लेकिन यह है कि वहाँ एग्जाम्पल्स हैं। फिर भी मेरे एक दोस्त हैं मोनिस रहमान, यहाँ से गए हैं वो, यहाँ मेरे साथ काम करते थे इंटेल में, सिलिकन वैली से गए, उन्होंने रोजी डॉट कॉम के नाम से चला रहे हैं, अच्छी सक्सेसफुल है उनकी कंपनी। फिर जिया चिश्ती हैं जिन्होंने एक कंपनी शुरू की हुई है अफिनिटी के नाम से, वहाँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रही है बेस्ड एल्गोरिथम्स फॉर कस्टमर सपोर्ट सिस्टम्स। या जनाब जो करीम है वहाँ, करीम का जो इंजीनियरिंग का काम है वो ज़्यादातर एक यहाँ से सिस्को में काम करते थे, एक साहब वो कराची गए हैं, वहाँ उन्होंने पूरा डिज़ाइन सेंटर वगैरह बनाया, वो करते हैं ज़्यादातर काम। जो वेंचर डाइव के नाम से उन्होंने एक शुरू की थी इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी, जिसको बाद में करीम ने कॉन्ट्रैक्ट किया अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए और फिर उनको ख़रीद लिया उन्होंने। तो ये सब हो रहा है यहाँ पर पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन यह है कि अक्सर जो ज़्यादातर जो कैपिटल उनके पास आया है वो पाकिस्तान से नहीं आया है, ना तो वो एंटरप्रेन्योर्स ओरिजिनली पाकिस्तानी हैं, मतलब ये कि हैं पाकिस्तान के, लेकिन यह है कि वो पाकिस्तान की वो वाया अमेरिका वहाँ पहुँचे हैं, और दूसरे उनका जो कैपिटल है वो भी पाकिस्तान से नहीं आया, ज़्यादातर वो भी बाहर से आया है। तो ये मुश्किलात हैं अभी, जब तक वहाँ अपना इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा स्टार्टअप का, जिसमें हर तरह के लोग चाहिए, कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की एग्जांपल्स हों, कुछ जनाब वेंचर कैपिटलिस्ट हों, कुछ वहाँ ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स हों कि जो पुराने जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो चलाएं, जिनको समझ बूझ हो इसकी। तो जब तक जो है वो ब्रॉड स्केल पे सक्सेस जो है वो मुमकिन नहीं है।
तो हमारी ये जो अगेन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी है, इनका इनके काम पे कैसा आप गौर करें?
I don't have much faith in them. I don't have a particularly high opinion of people who ये पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग अब जो आईटी चला रहे हैं वो कराची के पॉलिटिशियन हैं जिनका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं वो भी पॉलिटिशियन हैं, उनको साइंस टेक्नोलॉजी की हलिबे भी नहीं मालूम है।
और जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं या रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? डू वी हैव इनफ ह्यूमन कैपिटल जनरेशन कैपेसिटी? क्या हमारे पास यूनिवर्सिटीज और थिंक टैंक्स या रिसर्च सेंटर्स हैं जो इस किस्म के काम में असिस्ट कर सकते हैं?
रिसर्च तो अच्छी हो रही है, पब्लिकेशन भी बहुत हो रही है। अब पिछले साल का जो डेटा था नेचर मैगजीन का, तो उसमें उनका जो कैलकुलेशन ये थी, हिसाब किताब उन्होंने जो रिपोर्ट दी हुई है कि जो पाकिस्तान का रिसर्च आउटपुट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, और उसकी वजह यह कि बहुत ही लो बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ये असल में मुशर्रफ के आने से पहले जो है ना, वहां पर तकरीबन यूनिवर्सिटी सिस्टम बिल्कुल बहुत छोटा सा था, देयर वर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज, वेरी फ्यू पीपल हु वर डूइंग रिसर्च। जो मुशर्रफ ने खासतौर पर जो है डॉक्टर अताउर रहमान के तहत काम किया, उन्होंने बड़ी रैपिडली एक्सपेंड की नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स दिए, बहुत लोगों को बाहर भेजा और रिसर्च को बड़ा सपोर्ट किया, ग्रांट्स वगैरह दिए लोगों को रिसर्च करने के लिए। अब उसमें अब्यूज़ भी हुई है जाहिर है कि कुछ जो हैं जाहिर कुछ पेपर्स वगैरह अब लोग करते ये हैं कि वो बदनाम करने के लिए सिर्फ जो अब्यूसिव बिहेवियर है कुछ लोगों का उसको सेलेक्टिवली प्रोजेक्ट करते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो नेचर मैगजीन जो पब्लिश करता है अपनी लिस्ट वगैरह, वो जो है वो क्वालिटी एडजस्टेड आउटपुट की बुनियाद पर होता है। वो ये नहीं कि कोई भी जो नॉनसेंस पेपर छाप दे उसको जनाब वो कंसिडर करते हैं, और पीयर रिव्यूड रिसर्च को वो सिर्फ कंसिडर करते हैं।
बट क्या इन टर्म्स ऑफ अ डिजिटाइजेशन एफर्ट, वो तो नेचर वगैरह तो बड़ी ब्रॉड बात करें ना, अगर हम सिर्फ डिजिटाइजेशन एफर्ट की बात करें जो इमरान प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि करना है, तो डिजिटाइजेशन एफर्ट में क्या हमारे पास इतने वो क्या कहते हैं लोकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर थिंकर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग, इस किस्म के हमारे पास इदारे हैं?
नहीं नहीं, ग्रो हो रहे हैं। अब मैंने सुना है कि 30,000 to 40,000 आईटी ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं यूनिवर्सिटीज से बाहर। अच्छा। तो दैट्स अ गुड नंबर,
दैट्स अ गुड नंबर।
और फिर जनाब उनके लिए फ्री लैंसर्स जो है ना वहाँ के, वो कहते हैं कि आई थिंक इट्स द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्री लैंसर्स इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम पाकिस्तान।
इसमें स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज भी बहुत निकलनी चाहिए अगर ठीक तरीके से करें।
हाँ, उसमें यही है ना कि स्टार्टअप के लिए आपको जो पूरा इकोसिस्टम चाहिए, एक तो कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हों जो कि पहले कर चुके हैं कुछ, जो दूसरों को भी गाइड कर सकें, दूसरे कैपिटल, उसका रिस्क कैपिटल नहीं है वहाँ पर इतना। वहाँ पर लोग जो है ना ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते कि जिसमें बहुत इतना ज़्यादा रिस्क हो। और फिर उसके बाद वहाँ मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा लीगल फ्रेमवर्क भी चाहिए ऐसा कि अगर कोई बाहर से पैसा वैसे लेके आए तो इट्स वेल प्रोटेक्टेड, ऐसा ना हो कि जनाब कोई और उसको खावा जाए ऐसी पैसे लेके और उसका कोई प्रोटेक्शन ना हो। अब यहाँ पर जिस तरह के वो अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं ना, जब ये वीसीज वगैरह साइन करते हैं टर्म शीट, उसमें बहुत सी जो ऐसी चीजें हैं कि जिनका पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यू नो, राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जैसे राइट ऑफ उनका जो है फर्स्ट एग्जिट है कि जो भी पैसा वैसा मिलेगा दे विल गेट 3x देयर, यू नो, जब एग्जिट होगा 2x और 3x देयर इन्वेस्टमेंट, प्लस दे विल गेट एनी एडिशनल यू नो रिटर्न दैट गोज टू अदर इन्वेस्टर्स एज वेल। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके लिए पूरा लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, उसके लिए एनफोर्समेंट चाहिए, उसके लिए ऐसा जुडिशियल सिस्टम चाहिए कि जो इस सब को इन्फोर्स कर सके। वहाँ तो जजेस को तो आमतौर पर कुछ बतावा था नहीं होता ज़्यादा। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इट्स वेरी करप्ट एंड वेरी इनएफिशिएंट।
ये जो अपना क्या कहते हैं हमारी डिजिटाइजेशन पॉलिसी की तरफ अगर दोबारा हम आए, तो इसको डेवलप करने में आप जानते हैं जो गूगल से खातून गई हैं, क्या इन्हें ये जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एफर्ट लीड हो रहा है, आपका ख्याल है कि ये ठीक तरीका है करने का, ये और इनके साथ इतने वो आई डोंट नो दिस लेडी एट ऑल, पर इनका बैकग्राउंड आपको पता है?
मुझे ज़्यादा पता नहीं है।
अच्छा।
इनके अच्छा। बारे में ये जो मोनिस है ये इन खातून को जानता है।
अच्छा।
तो उसने मुझे बताया कि इनका जो फर्स्ट नेम है वो तानिया है और लास्ट नेम पता नहीं क्या है इनका, लेकिन बहरहाल ये सिंगापुर में काम करती हैं। यहाँ गूगल के हेड क्वार्टर से भी इन्होंने कोई ख़ास काम वाम नहीं, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है इनका। ये मेरा ख्याल में तो वहाँ जो ज़्यादातर काम करते हैं ना, ये दूसरे मुल्कों में ये मार्केटिंग एंड सेल्स का काम ज़्यादा होता है, और एक्चुअल रियल इंजीनियरिंग जो है वो कम होती है। लेकिन पता नहीं इनका रोल क्या है, पॉलिसी रोल है क्या, उनको इसके बारे में मालूम है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क वगैरह किस तरह के चाहिए इन चीज़ों को सपोर्ट करने।
अच्छा, जो एक चीज़ और बहुत सुनने में आती है कि चीन ने अपने डिजिटल इकोनॉमी को काफ़ी प्रोटेक्ट किया, यानी कि गूगल को फॉर एग्जांपल नहीं आने दिया, उन्होंने अपना वी चैट भी रखा हुआ है, उन्होंने अपना काफ़ी सारे फेसबुक के भी चीज़ें अलहदा की हुई हैं, तो क्या हमें भी ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। चीन जो है ना, उनकी एक तो ये है कि वो बड़ी कमांड इकॉनमी है, पाकिस्तान की कोई कमांड इकॉनमी नहीं है, और दूसरे कि डोनर्स वगैरह पर डिपेंडेंट है। वो कहेंगे कि भाई अगर गूगल को नहीं आना दोगे तो हम तुम्हारे को पैसे नहीं देंगे, तो हमारे पास वो लग्जरी नहीं है। चाइना ने जो किया है वो तो इट इज सो अमेजिंग, नो अदर कंट्री हैज बीन एबल टू डू व्हाट चाइना हैज डन, एंड पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, कि उनकी जो है वो उन्होंने चाइना चाइनीज लैंग्वेज के नाम से प्रोटेक्ट किया अपने पूरे इंटरनेट इंडस्ट्री को, पूरी जो उनकी जो सोशल नेटवर्क्स हैं, पेमेंट सिस्टम्स हैं। अब मैंने सुना इस हद तक है वहाँ तो डिजिटाइजेशन, मेरे एक दोस्त हैं वो जाते रहते हैं, वो कह रहे थे कि वहाँ जो बैगर्स हैं वो भी कैश नहीं लेते हैं, अब वो अपना QR कोड लगा के बैठ जाते हैं, गाना वाना गा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, QR कोड उनका लगा हुआ है। अब लोग जो हैं वो उनका QR कोड स्कैन करके उनको भीख वगैरह देते हैं। तो इस हद तक वहाँ डिजिटाइजेशन है, और कैश, बल्कि कई जगह तो वो नो कैश है, स्टोर्स में कैश लेते ही नहीं है वो सिर्फ वी चैट से आप पे कर सकते हैं उन्हें।
मैंने कल यहाँ भी देखा DC में एक आदमी वो गाना वाना वोटे तो सड़क पे जैसे नहीं करते, वो बाजा बजा रहा था, गाना गा रहा था, उसने अपने वो पैसे के बजाय लगाया था वेनमो का नाम।
अच्छा,
मुझे वेनमो से पैसे दो, तो मुझे इससे हंसी आ रही थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हो रहा है। तो आखिर मेरे आसिफ, बताइए आप क्या एडवाइस करेंगे पाकिस्तानी बच्चों को जो आपके एरिया में हैं, कि वो क्या सोचें इन टर्म्स ऑफ करियर्स, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स वगैरह, किस तरह उनकी सोच जानी चाहिए कि ये डिजिटाइजेशन प्रोग्राम से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं वो, तो किस डायरेक्शन में सोचें?
हाँ, उनके लिए इस वक्त जो है बेस्ट मेरे ख्याल में एवेन्यू तो यही है कि वो अपना एज ए फ्रीलांसर काम शुरू कर दें, उनके जो स्किल्स वगैरह हैं, क्योंकि एक तरह से ग्लोबल मार्केट प्लेस है ये जो फ्रीलांसर्स की है, और इसमें जनाब अपने स्किल्स वगैरह वो होन करें और अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहें। अंदर पाकिस्तान में कोई अपॉर्चुनिटीज जब इमर्ज होती हैं या उनको लगता है कि वो उनके पर्टिकुलर आइडिया है, तो वो कोशिश करें कि जनाब वो वहाँ पर कुछ बूटस्ट्रैप करने की कोशिश करें। बेस्ट तो ये कि वहाँ बूटस्ट्रैप इज़ द बेस्ट आइडिया, लेकिन अगर उनको रिस्क कैपिटल मिल जाता तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि रिस्क कैपिटल जो है वो बड़ा मुश्किल है वहाँ मिलना।
ज़रा ये बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी समझा दें, क्योंकि काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगी वहाँ।
हाँ, बूटस्ट्रैप ये है कि आप जो हैं अपना छोटे स्केल पर खुद काम शुरू करें, और रफ्ता रफ्ता जैसे आपकी इनकम बढ़े आप जनाब उसको इन्वेस्ट करें उसको पैसे को, ताकि आपको बाहर से पैसे ना लेने पड़े। अब ये जो सबसे बड़ी जो मशहूर एग्जांपल अमेरिका में जो बूटस्ट्रैप की है वो है माइक्रोसॉफ्ट की। तो उसमें ये कि माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा हुआ कि ये अपना खुद लगे हुए थे, यू नो, बिल गेट्स और पॉल एलन, लेकिन ये कि फिर ऐसा हुआ कि इन्होंने एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कुछ डेवलप कर रहे थे ये, तो उसमें IBM को इंटरेस्ट था, IBM ने इनसे बात की, इनसे कहा कि भाई तुम हमें बेचोगे ये, तो इन्होंने कहा कि नहीं बेचेंगे हम, लेकिन एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं देंगे तुम्हें, और ख़ुद था भी नहीं इनके पास। इन्होंने जाके बिल गेट्स ने क्या किया कि एक और गैरी किल्डॉल एक आदमी था यहाँ सेंटा क्रूज में रहता था, उससे पीसी डॉस खरीद ली उसकी और उसको जनाब कहा कि ये हमारी है आईबीएम को, वो उन्होंने बेच दी लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं दिए उसको। तो जब आईबीएम पीसी निकला इनकी जो सॉफ्टवेयर के साथ वो बड़ा पॉपुलर हो गया, तो फिर इन्होंने जाके अपनी सॉफ्टवेयर जो है दूसरे लोगों को बेचनी शुरू की, कॉम्पैक को बेची। तो इस तरह जनाब रफ्ता रफ्ता इनकी जनाब खूब बिल्डअप होता गया इनका जो है कैपिटल बेस, और खूब री इन्वेस्ट करते रहे, और नाउ इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट यू नो टेक कंपनीज इन द वर्ल्ड।
बिल्कुल 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 बिल्कुल।
तो ये एक सबसे मशहूर एग्जांपल है बिल गेट्स की, इन बिकेम यू नो ही बिकेम द रिचेस्ट मैन बाय बूटस्ट्रैपिंग।
बिल्कुल सही कह रहे हैं राज साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी आपने बातें की, एंड आई थिंक किड्स विल रियली एंजॉय लिसनिंग टू दिस, और ऐसे ही नॉलेज बढ़ती है अगर हम सब आपस में शेयर करें तो। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू,
एंजॉय टॉकिंग विद यू,
आपसे बाकी मजीद गपशप रहेगी।
श्योर।